ಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭಿಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕದಾ ಮಯ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರ ಜಾತಂ ಸರ್ವಾಂಗತಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಹಂಸೈತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಸಹಗಣಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸರಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸಾಧು ಸಾಧು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಹಮ ಲೋಗ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ ರಹೆ ಥೆ. ತೋ ಅಭಿ 11ವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜಿಸ್ಕಾ ಶೀರ್ಷಕ ಹೈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ. तो भगवान इस अध्याय में अपने विराट रूप का, जो भगवान विराट रूप को अर्जुन के सामने दर्शाए उसका वर्णन इस अध्याय में आता है. सार रूप में इस अध्याय में क्या वर्णन हुआ है, भगवान कृष्ण का जो श्याम सुंदर द्विभुज रूप जो है वो आदि रूप है, भगवान के वो मूल रूप है. या कृष्ण जो है वो अवतार ही है, सभी अवतार उनसे आते हैं, अवतार ही कृष्ण, उसका इस अध्याय में वर्णन आता है. क्योंकि उन्होंने विश्वरूप को भी दर्शन किया खरा है अर्जुन को, और बाद में चतुर्भुज रूप को भी वर्णन उन्होंने दर्शन करा है, और अंत में उनके सो मूल रूप है उसको वो वापस आ जाते हैं. तो और अंत में इस अध्याय के अंत में वो मूल भगवान के जो मूल रूप है द्विभुज रूप उसका गुणगान किया गया है. तो ये इस अध्याय का सार है. हम लोगों ने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में ही हम लोगों ने देखा कि भगवान क्या बोल रहे हैं, एकांशे न स्थितो जगत, मेरे एक अंश मात्र से मैं क्या पूरा ये ब्रह्मांड को या भौतिक जगत को उसको धारण करता हूँ, ऐसे बोलते हैं. इष्टव्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, ऐसे वो कहते हैं. तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, जो परमात्मा है या क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है जो पालन करते हैं इस, वो भगवान के एक अंश है, भगवान कृष्ण के अंश. जनरली इस भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं जब अवतार आते हैं तो ये वो सभी क्षीरोदक्षाय विष्णु के द्वारा आते हैं, उनके विस्तार माने जाते हैं. तो उनके विस्तार माने जाते हैं. लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, वो ऐसे क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार नहीं है. तो पहले के आचार्यों ने ऐसे सिखाया है, इसलिए लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण भी क्या है, भगवान विष्णु के अवतार है. हालांकि दोनों में से कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान हैं. लेकिन भगवान कृष्ण का जो द्विभुज रूप है, श्याम सुंदर रूप, वो मूल रूप है, उनसे सब कुछ निकलता है. वही अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्वितः. विष्टभ्याहम अहम कृष्णम एकाम से न स्थितो जगत। ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ जो परमात्मा है उनसे आते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो उनसे आते हैं, ऐसे भगवान बोल रहे। तो ये दशम स्कंद में वर्णन हुआ, उसका जो प्राकट्य दर्शन जो है वो इस अध्याय में वर्णन आता है, प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दैट है ना, उसका इस अध्याय में वर्णन आता है। तो श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में इस पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण रूप में दिखाया गया है। उसका वर्णन पिछले अध्याय में हुआ, वो कैसे कारणों का कारण है करके, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है, भगवान ने स्वयं दिखाया उनको, अर्जुन को, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है, इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। ऐसे पिछले अध्याय में इसकी व्याख्या की गई थी, अभी उसको दिखाया जा रहा है, ऐसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। और अंतिम श्लोक के तात्पर्य में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी प्रभुपाद इस अध्याय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वो अंतिम श्लोक के तात्पर्य के अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें देखे, सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को भी, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है, ऐसा नहीं कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु के ही अभिव्यक्ति है। वो विश्वरूप नहीं है ना, विश्वरूप का ये वो अवतार नहीं है, या वो भगवान विष्णु के अवतार है, वो दोनों नहीं है। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं, उनसे सब कुछ निकलते हैं, सभी रूप विष्णु तो हजार लाखों है, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बार बार क्या बताते हैं, वो कृष्ण 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 के अन्य रूपों से भी आकर्षित नहीं होना चाहिए ऐसे बोलते। तो ये गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का जो भाव होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। क्या है, कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता में? प्रेमांजनच्छ्रित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कि वो बोलते हैं कि जो प्रेम का अंजन जो लगाया है अपने नेत्रों के ऊपर, वो हमेशा भगवान को 24 घंटों अपने हृदय में देखते हैं और उनको छोड़कर कुछ नहीं देखते हैं। बोलते अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है ना। तो वो हमें समझना चाहिए। तो लोग आके वो पूछते हैं, बार बार ये प्रश्न पूछते हैं ना, आप लोग कृष्ण के बारे में बोलते हो लेकिन कृष्ण तो विष्णु के अवतार है, या कभी कभी वो लोग बोलते हैं राम के बाद कृष्ण आए ऐसे। तो हमें भगवद्गीता 11वें अध्याय से या 10वें अध्याय से उनको समझाना चाहिए कि भगवान कृष्ण का जो रूप है वो मूल रूप है, उनसे सब कुछ निकलता है। तो पहले और इस अध्याय में इतने सारे विभाग किए गए, पहले अर्जुन का इच्छा व्यक्त, वास्तव में अर्जुन उनका इच्छा नहीं था विश्वरूप देखने का, क्योंकि शुद्ध भक्ति विश्वरूप को देखने के लिए उतना उत्सुक नहीं रहता, लेकिन अन्यों के कारण सबको ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान कृष्ण सिर्फ एक थेरेटिकली ऐसे नहीं बता रहे कि मैं भगवान हूँ, मैं परम सत्य हूँ, मेरे सभी ऐश्वर्य है, मेरे शक्तियाँ है, नहीं वास्तविक वो दिखा भी सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर विश्व रूप का देखने की इच्छा वहाँ पर प्रकट। एक और चीज इस अध्याय में आता है, विशेष करके इस पहले विभाग में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन दूसरों को ये सिद्ध करना चाहते थे कि सिर्फ भगवान ऐसे ही बोल नहीं रहे, लेकिन वो भगवान भी है, ऐसे सिद्ध भी कर सकते हैं दिखा के उनको। और दूसरा है अवतार, अवतार को कैसे समझना, एक सदी सही अवतार या अधिकृत अवतार क्या कौन सा है, उसके क्या लक्षण है। कोई भी आके मैं भगवान राम और कृष्ण के अवतार हूँ करके ऐसे बोल दिया तो वो आप स्वीकार करेंगे, उसके लिए क्या है लक्षण, व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स। हम पहले चर्चा कर चुके थे ना क्या क्या है, क्या क्या आप पूछेंगे, शास्त्रों में वर्णन आना चाहिए। पहला चीज विश्वरूप दिखाओ ऐसे, और शरीर के ऊपर सिंह होना चाहिए, और एक विशेष उद्देश्य होना चाहिए, और वो सिंह हो गया, शेष कारण हो गया, चार हो गए। अतिमर्तेन भगवान कृष्ण बहुत ही ऐसे सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज, सामान्य लोग जो नहीं कर पाते वैसे कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा ऐसा विभूति बनाया, लोगों का रोगों से मुक्त कराए, ऐसे कुछ 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 करते हैं वो लोग, तो कुछ मैजिक करते हैं, तो ऐसे नहीं होता। और विशेष रूप में विराट रूप दिखाना चाहिए। तो इसलिए दूसरों को ये या अवतार को जानने का एक विधि को स्थापित करना चाहते थे अर्जुन, इसलिए उन्होंने भगवान को ये विश्व रूप दिखाने के लिए बताया, विराट रूप दिखाने के लिए बताया। और उसके बाद कृष्ण द्वारा उन्हें अनेक विश्वरूप, दिस इज ओके, बोथ टर्मिनोलॉजीज विराट रूप एंड विश्व रूप बोथ आर ओके, व्हाट डू यू ऑल थिंक। लेकिन इसको भी प्रभुपाद जी बोलते हैं ना यहाँ पर यूनिवर्सल फॉर्म, दोनों ठीक है ना, ठीक है ओके। लेकिन अलग अलग प्रकार के विश्व रूप होंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कृष्ण द्वारा अनेक विश्व रूप का वर्णन, अनेक विश्व रूप का वर्णन, कृष्ण का विश्व रूप के वर्णन ऐसे ही अनेक छे में छे। सॉरी उनके विश्व रूप का वर्णन, ठीक है। तो ऐसे है अर्जुन कहते हैं ये देखो देखो लाइक ऐसे, हाँ इसको कभी कोई नहीं पहले देखा नहीं है ऐसे वर्णन करते हुए। और इसी बाग में अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि भी देते हैं उनको देखने के लिए, स्पिरिचुअल आईज बोलते हैं प्रॉपर। संजय द्वारा अर्जुन के द्वारा देखे गए विश्वरूप का वर्णन, अर्जुन के द्वारा देखे गए विश्वरूप का संजय के वर्णन ऐसे भी कर सकते हैं ना, ठीक है, नॉट नाउ बट दे कैन डू दैट। जो अर्जुन उन्होंने देखा उसको वर्णन करते हैं संजय धृतराष्ट्र को। अभी यहां पर देखना चाहिए अर्जुन को छोड़कर, हालांकि सब लोग भगवद गीता सुन रहे थे, लेकिन अर्जुन को छोड़कर किसी और ने इस विश्वरूप को देखा नहीं, देवता लोग देख रहे थे और जो असुर लोग देख के भी वो लोग भाग रहे थे, वो बाद में वर्णन आता है। लेकिन इस युद्ध को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में किसी ने देखा नहीं उसको, क्योंकि सिर्फ अर्जुन को चक्षु दिया गया था। लेकिन संजय और धृतराष्ट्र दोनों, संजय देख रहे थे उसको, वो व्यास की कृपा से, ऐसे श्रील प्रभुपाद वर्णन करते। तो संजय अर्जुन को छोड़कर संजय ही एक ही व्यक्ति है जिन्होंने इस विश्व को दर्शन किए। तो वो धृतराष्ट्र को, हालांकि उसके पास वो दिव्य चक्षु छोड़िए सो सामान्य चक्षु भी नहीं है देखने के लिए, हाँ, इसलिए उनको एक ऐसा मानसिक चित्र का वर्णन करते हैं वो संजय, या ऐसे मानसिक चित्र उनको वर्णन करते हैं, ये वर्णन है। और उसके बाद अर्जुन इस विश्व रूप को देखकर वो 14वें श्लोक में वर्णन आता है कि वो ही बिकेम, वहाँ पर अस्टाउंडेड, आश्चर्यचकित हो गए अर्जुन ये विश्वरूप को देखकर। और हालांकि वो मित्र भावना था उनका, मित्र रस थे, रस है अर्जुन का सक्य रस, फिर भी यहाँ पर वो भगवान के ऐश्वर्य को देखकर वो क्या हो जाता है, उनसे, उनके प्रति एक सम्मान की भावना जागृत हो जाता है। तो वो आश्चर्यजनक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सम्मान की भावना से अर्जुन प्रार्थनाएं अर्पण करना शुरू कर देते हैं। तो वो पूरा वर्णन, और उन प्रार्थनाओं में भी वो देख, वो क्या देख रहे हैं विश्वरूप में, वो अपने स्वयं वर्णन करते हैं, आपके इसमें मैं ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, सब वर्णन करते हैं। फिर बाद में काल रूप का वर्णन आता है, क्योंकि अंत में अर्जुन कहते हैं ये सब आप दिखा रहे हो, आप कौन हो, क्या आपका उद्देश्य है। फिर अर्जुन उसके उत्तर, भगवान उसके उत्तर में कहते हैं मैं काल हूँ, सबको विनाश करने के लिए आया हूँ, आप 5 पांडवों को छोड़कर सबको विनाश करूँगा ऐसे। और वहाँ पर भगवान का जो मिशन है उसके बारे में भी वर्णन आता है, या दूसरे शब्दों में कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि कैसे भगवान का एक मिशन था, उनकी इच्छा था वो, तो वहाँ पर वो वर्णन आता है। फिर अर्जुन भगवान को समर्पित हो जाते हैं और चतुर्भुज रूप को दिखाने के लिए इच्छा करते हैं। क्यों चतुर्भुज रूप? 7वें, 9वें और 10वें अध्याय में भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है, वो विराट रूप में या विश्व रूप में भगवान उन सभी ऐश्वर्यों को दर्शन कराते हैं या दिखाते हैं। और जैसे 10वें अध्याय के अंत में वो कहते हैं कि मैं परमात्मा रूप में पूरा ये जगत को पाल रहा हूँ, मेरा एक अंश के, अंश के द्वारा। तो फिर अर्जुन उसको भी देखना चाहते थे, आपने बताया लेकिन उसको थोड़ा दिखाइए, मतलब उतना चुनौतीपूर्वक नहीं, मतलब वो दूसरों को सिद्ध करने के लिए। तो फिर वो चतुर्भुज रूप को भी, हाँ, और एक और कारण कि अर्जुन उससे भयभीत भी हो गए उस विराट रूप को देखकर, और उनको भय हो गया, वो इतना उसको, उससे वो और देखना नहीं चाहते थे उसको, बस बस हो गया। तो और फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण उस विश्व रूप को गुणगान करते हैं, इसको कोई और कभी देखा नहीं था, आपको मैंने दिखाया है। फिर वो चतुर्भुज रूप भी दर्शन कराते हैं, फिर अपने स्वयं जो द्विभुज रूप है उसको दिखाते हैं। फिर अर्जुन वो विनती करते हैं, आप फिर से वो मैं मुझे सौम्य रूप को दिखाइए, जो सुंदर श्याम सुंदर का जो रूप है द्विभुज रूप। फिर उसके बाद में उस द्विभुज रूप का महिमा का वर्णन हुआ है। कैसे वो भगवान का मूल रूप है ऐसे। तो ये 8 विभाग लंबा अध्याय है, 55 श्लोक है, लेकिन बहुत सारे श्लोकों को तात्पर्य नहीं है। तो हम आशा करते हैं इसको आज चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 1, अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमाध्यात्म संहितम् मोहोयम् विगतो मम। अर्जुन ने कहा, अपने जिन आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। सो मेरा मोह दूर हो गया है। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संहितम्। आपने क्या उपदेश दिए? परमं गुह्यम आध्यात्म संहितम्। भगवान कृष्ण गुह्यम, परमं गुह्यम, गुह्यतमम या परमं गुह्यम दोनों एक ही है। और 10वें अध्याय में विशेष करके स्पेसिफिक ऑपुलेंसेस, उन विशेष ऐश्वर्यों को भी उन्होंने वर्णन किया। तो विशेष करके जब भगवान के बारे में उनके महात्म्य, तो जो भगवान वर्णन किया इन अध्यायों में, विशेष करके 7वें 8वें 9वें और 10वें अध्याय में, तो उससे अर्जुन का क्या, क्यों उन्होंने ये सब चीज़ वर्णन किए भगवान? क्योंकि अर्जुन के ऊपर वो अनुग्रह दिखाना चाहते थे। तो इसका पुष्टि हम लोग देखते हैं 9वें अध्याय के आरंभ में, वो कहते हैं कि इदम ते गुह्यतमम प्रवक्षाम अनसूयवे, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्षाम अनसूयवे। सो ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष शेषु बात। तो अर्जुन को कह रहे थे भगवान कि आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं आपको ये गुह्य ज्ञान बताऊंगा। सो ऐसे वो कहते हैं। और 6वें अध्याय के आरंभ में भी हम लोगों ने देखा, विशेष करके यहाँ पर 9वें अध्याय के आरंभ में, और 10वें अध्याय के आरंभ में भी उन्होंने क्या कहा भगवान ने, उन्होंने कहा कि भूयैव महाभावो शुनु मे परमं वचः तत्तेहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सो प्रियमानाय, प्रियमानाय क्योंकि आप मुझे बहुत ही प्रिय हो, इसलिए मैं ये परमं वचः, मेरा सर्वोच्च उपदेश है, मैं आपको प्रदान करूँगा ऐसे अर्जुन को। सो 9वें अध्याय में गुह्य गुह्यतमम जो उपदेश है उनको दिए, 10वें अध्याय में उनके परम वचनों को, उपदेश को दिया उन्होंने। तो इसलिए प्रियमाणम हितकामया, अर्जुन की भलाई के लिए, क्योंकि वो भगवान से बहुत ही प्रिय है। तो अर्जुन उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्नोलेजिंग है।
व्हाट दे हैव ट्रांसलेटेड,
तो उसको स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर, आपने सर्वोच्च गुह्यतमम उपदेश हमें दिया है, मद अनुग्रह है, जैसे पिछले अध्याय में हितकाम में उनकी भलाई के लिए मेरे ऊपर अनुग्रह करके या अनुग्रह करने के लिए आपने ये परम उपदेश दिया है। तो इसको सुनकर क्या हो गया, उसे सुनकर यत्तोक्तम, वो उनको सुनकर त्वयोक्तम या यत् त्वयोक्तम, इसको सुनकर मोहम मोहोयम विगतो मम, मोह से मैं मुक्त हो गया हूँ ऐसे वो कहते हैं। तो मोह से मुक्त होना मतलब क्या है, मोह क्या होता है बताइए, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया मोह का क्या अर्थ होता है।
कोई चीज से लगा हुआ
और कुछ? मोह मतलब देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का अर्थ होता है उसके संबंध में जो भी चीज है उससे आसक्ति होती है। परिवार वालों से, जैसे अर्जुन को परिवार वालों से मोह था, है ना, यहाँ पर आरंभ में वर्णन था, इसको मोह कहते हैं। या जो भी वस्तुएं, इस शरीर को सुविधा या आनंद प्रदान, शरीर और इंद्रियों को, उनसे आसक्ति, मन को, तो इसको मोह कहते हैं। तो मैं उस मोह से अभी मुक्त हो गया हूँ, ऐसे वो कहते हैं अर्जुन। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वो कह रहे हैं कि तो मोहोयम विगतो मम, उससे मुक्त हो गया हूँ। फिर आगे जाके विराट रूप का क्या, क्यों वो इच्छा कर रहे हो? अपने लिए नहीं कर रहे वो, क्योंकि वो अप्रसन्न है कि भगवान उनके मित्र है, ऐसे मित्र मेरे है करके उनको बहुत ही प्रसन्नता है। लेकिन दूसरों के लिए, उनके दिव्यता को स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण को वो इस अध्याय में विश्व रूप या विराट रूप का दर्शन कराने के लिए कहते हैं। प्रभुपाद जी उसको वर्णन करते हैं बाद में क्या क्या होता है कर। तो श्लोक क्रमांक 2, भवाप्ययौ हि भूतानां सुप्तौ स्तरशो मया तत्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो हे कमल नयन, मैंने कमल नयन, वो कैसे उनको संबोधित कर रहे, कमल नयन, कमल पत्राक्ष, ऐसे कोई बता सकते हैं कि भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं जो कमल पत्र या कमल दल से या कमल से संबंधित उनके नेत्रों का वर्णन किया गया है? पद्मलोचना और अरविंदाक्ष, पद्माक्ष, कमल लोचना, कमल लोचन भी है ना, कमलाक्ष, अंबुजाक्ष और अरविंद दलायताक्ष, हम लोग हर रोज गाते हैं ना, वेणुं कुणन्तम् अरविन्द दलायताक्ष, अरविंदाक्ष। तो ऐसे कमल के साथ, वास्तव में कमल के साथ भगवान का बहुत सारे नाम है इसलिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर उनके नेत्रों का जो वर्णन किया गया, नेत्रों के संबंध में, तो ऐसे कई नाम हैं भगवान के। तो यहाँ पर वो कमल नयन करके उनको संबोधित कर रहे हैं। तो उसका महत्व क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया, तो वो कहते हैं वो कमल उसको उनको संबोधित करते हुए कमल नयन करके, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया, आप कैसे सभी जीवों का जन्म है और विनाश करने वाले, या उनको प्रकट करने वाले और उनको अप्रकट करने वाले हैं, तो या आप उनका स्रोत भी है और प्रलय भी है, इसको मैं विस्तार से सुन चुका हूँ। ऐसे बोलते कहाँ पर ऐसे वर्णन हुआ है? जो भी जीव इस भौतिक जगत में अस्तित्व है, में जो भी है, उसका मैं सृष्टि करने वाला हूँ उनको और उनको विनाश करने वाला हूँ। ये तद ये त, ये ये तद यो योनिनि भूतानि अहम कृष्ण
सर्वानित्युपदारया
अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में पहले दो अपरा और अपरा प्रकृति को वर्णन करके वो बोलते हैं जो कुछ भी जो भी जीव इस जगत में अस्तित्व में है वो सभी इन दो शक्तियों के कारण है, मैं उनके कारण हूँ और विनाश भी हूँ। भगवान बोलते ऐसे उसके विस्तार से बाद में वो बताया ना उसको ये और विस्तार करके भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के जब जन्म होता है तो मैं उनका सृष्टि करता हूँ, ब्रह्मा जी के रात हो गए तो ये जीव विनाश हो जाते हैं, या ब्रह्मा जी का अगले अध्याय में भी उन्होंने वर्णन किया। तो ऐसे भगवान तो भव मीन्स उनका प्राकट्य, अप्यय मीन्स उनका अप्राकट्य ही भूतानाम श्रुतो विस्तर शोमया। सो उसके बाद में तत्वतः कमल प्रत्राक्ष महात्म्यम अपिछा व्ययम, और आपकी महात्म्या को वो 10वें अध्याय में वर्णन आता है उनके महात्म्य, 9वें अध्याय में और 7वें अध्याय में भी थोड़ा थोड़ा आता है। तो उनकी महात्म्या को तत्वतः उन्होंने सुन लिया भगवान के साथ भगवान से। तो ये सब 9वें अध्याय में जहाँ पर शिल प्रपद 9वें अध्याय का उनके क्या महात्म्य है, 9वें अध्याय के आरंभ में वो वर्णन हुआ ना कैसे महात्मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्साणि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। कैसे भौतिक जगत के साथ उनका संबंध भी रहता है और नहीं भी रहता, वो विद्यमान भी रहते हैं नहीं भी विद्यमान रहते हैं, सब कुछ उनके अंदर है फिर भी वो अलग है, ये सब चीज़ उनके महात्म्य है। तो उसका भी वर्णन हो गया, मैंने सुन लिया तत्वतः मतलब आपसे कमल पत्राक्ष महात्म्यम अपिछा व्ययम, ऐसे वो कहते हैं जिनका अचिंत्य शक्तियों का ऐश्वर्यों का पश्य मे योगम ऐश्वरम, भगवान वहाँ पर वर्णन करते हैं। को अर्जुन से भगवान कृष्ण से भगवान अर्जुन ने सुना। श्लोक क्रमांक 3 एवमेतद्यथात्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा। तो हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर एवं ये तद यथोत्थात्वम आत्मानं परमेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसे वो उनको संबोधित करते हैं। तो आप कैसे इस दृश्य जगत में प्रवेश किए हैं? वो दो तरीके से प्रवेश किए, एक परमात्मा के रूप में उन्होंने प्रवेश किया और दूसरा ये भौतिक ऐश्वर्यों के रूप में वो विद्यमान रहते हैं, उनकी शक्तियों का प्रदर्शन हुआ तो प्रकटे हुआ है, तो उनको मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, परमेश्वर और पुरुषोत्तम दोनों शब्द को यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। तो भगवान कैसे सभी इस भौतिक जगत में संसार में प्रवेश कर चुके हैं? बहु अथवा बहु नहीं तेना किम ज्ञाते नथवा अर्जुन इष्टव्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, में एक अंश उनके परमात्मा के रूप में वो प्रवेश कर चुके हैं सब जगह। तो वास्तव में देखेंगे और दूसरा है ऐश्वरम पुरुषोत्तम, इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम एवं एतत् यथात्वत्वं आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर आत्मा यहाँ पर वो भगवान कृष्ण को विशेष करके उनके परमात्मा रूप को जो सब जगह प्रवेश करते हैं और रूपम ऐश्वरम मतलब वो ऐश्वर्यों से युक्त उसको विराट रूप ये दोनों को देखना चाहता हूँ ऐसे अर्जुन यहाँ पर वो कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे विनंती कर रहे हैं तो इससे हम लोग समझ सकते हैं ये जो 11वें अध्याय क्या है पहले हमने देखा कि वो पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है भगवान का तो 10वें अध्याय में जो उन्होंने सुना लेकिन वो पूरा 7वें 9वें और 10वें अध्याय का पूरा ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है तो ये विशेष करके 11वें अध्याय और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दो चीज़ों को बता रहा है इस तात्पर्य में कि अर्जुन तो उनको इच्छा नहीं था कि उनको पता है इसलिए वो परमेश्वर या पुरुषोत्तम करके उनको संबोधित कर रहे हैं उनको पता है कि भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है उन्होंने पिछले अध्यायों में सुन लिया लेकिन यहाँ पर दूसरों को ये सिद्ध करने के लिए वो विनंती कर रहे हैं कि उस रूप को आप दिखाइए परमेश्वर के रूप को सबको नियंत्रण करने वाले का जो रूप है और दूसरा है जो अवतारों का जो सिद्ध करने का जो विधि है तरीका है उसको स्थापित करने के लिए अर्जुन यहाँ पर भगवान को इस रूप को दर्शन करने के लिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जाके बहुत सारे ऐसे तथाकथित अवतार होंगे ये भी एक कारण है क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भगवान करके उन्होंने वो ही डिड नॉट डिक्लेयर मतलब वो उन्होंने उजागर नहीं किया वो घोषणा नहीं किए वो ऐसे उन्होंने घोषणा नहीं किया कोई उनको अवतार करके पुकारते तो तुरंत ही अपने कान बंद करके विष्णु 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 कहते थे वो आप एक जीव को भगवान को समान बना रहे इसलिए नरक में जाना पड़ेगा हम लोगों को ऐसे वो कह करते थे तो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु वो दिखा रहे थे क्योंकि कलयुग में इसका बहुत सारे फायदा उठाएंगे यहाँ पर अर्जुन भी उसके लिए एक नियम स्थापित विधि स्थापित करना चाहते थे इसलिए उन्होंने इस रूप को दिखाने के लिए बताया भगवान श्लोक क्रमांक 4 मन्यसे यदि तत्शक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वां दर्शय आत्मानम् अव्ययम् मन्यसे यदि तत्शक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्मानम् अव्ययम् हे प्रभो हे योगेश्वर यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाए तो वास्तव में भगवान को समझना मुश्किल है या उनको देखना मुश्किल है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्रायम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदा इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा भगवान को नाम रूप गुण लीलाओं को हम लोग समझ नहीं सकते हैं लेकिन जो सेवन मुख हो जाएंगे जिह्वा से आरंभ करके सेवन मुखे ही जिह्वा दो भगवान स्वयं क्या करते हैं प्रदर्शित कर देते हैं तो ऐसे भक्त की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर इसलिए उनको देखना कठिन है और इसलिए यहाँ पर अर्जुन कैसे उनको समर्पित कर रहे मन से यदि तत्शक्यम आप ऐसे समझते हो कि मेरे अंदर योग्यता है आई डिजर्व आपको देखने के लिए आपकी उस रूप को देखने के लिए, फिर आप जो उनको मुझे दिखा सकते हैं, ऐसे कहते हैं। बहुत ही विनम्र भाव से कैसे प्रस्तुत हो, वो भगवान को बाध्य नहीं कर रहे, तुम दिखाओ करके, जैसे नास्तिक लोग कहते हैं ना, हाँ आप दिखाओ भगवान के, भगवान को दिखाओ, ऐसे नास्तिक लोग चुनौती देते हैं। लेकिन अर्जुन ऐसे चुनौती पूर्वक क्या हो यहाँ पर, उनको जो इच्छा नहीं कर रहे वो, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हम भगवान के पास कैसे जाना चाहिए या आध्यात्मिक गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, उनको कैसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। तो भगवान यदि आप इच्छा आप ऐसे सोचते हो कि मैं योग्य हूँ, या आध्यात्मिक गुरु को भी ऐसे ही हमें उनके पास जाना चाहिए, उनको ऐसे ही प्रश्न पूछना चाहिए, या आप ऐसे सोचते हो कि मैं योग्य हूँ ये समझने के लिए, आप इसका उत्तर बताइए ऐसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक। तो नास्तिक लोग असुर लोग भगवान को चुनौती देते हैं, वो चुनौती पूर्वक प्रश्न भी पूछते हैं, लेकिन भगवान हमारे सेवक नहीं है। प्रभुपाद जी वो हिंदी लेक्चर में कहते हैं, आपके बाप का सेवक तो नहीं है ना, कि नाचते नाचते वो मुरली बजाते आपके सामने प्रकट हो जाए करके ऐसे कहते हैं, है ना, या वो होटल में होते हैं ना सर्वेंट वेटर्स, वो ऐसे आप डिमांड उनको ऑर्डर करते हो, हाँ ये लेकर आओ ये लेकर आओ ये लेकर आओ, बाद में उनको एक टिप देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं भगवान, आपकी टिप के लिए वो वेट नहीं कर रहे। तो भगवान ही रिजर्व द नाइट राइट टू नॉट टू रिवील टू द इनसिग्निफिकेंट टू द चैलेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कंप्लीट होल। ऐसे प्रभुपाद भागवतम के पहले तात्पर्य में, भागवतम के एक तात्पर्य में लिखते पहले स्कंद के, भगवान ये अधिकार, उनको एक अधिकार है कि अपने आप को ऐसे बहुत ही तुच्छ परम के जो बहुत ही तुच्छ अंश है उसके चुनौती पूर्वक प्रश्न को या डिमांड है सो उसको नकारने का अधिकार वो रखते हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पर वो अपने शक्ति के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, या मतलब वो विश्वास नहीं रखते हैं, वो अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ये भक्त का लक्षण है, ये असली शिष्य का लक्षण है। लेकिन नास्तिकों के पास ऐसे नहीं होता, कभी वो भगवान उनको प्रकट नहीं होते, इसलिए नास्तिक लोग क्या करते हैं, वो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाते। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इफ द इनफाइनाइट रिवील्स हिमसेल्फ देन इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इनफाइनाइट बाय द ग्रेस ऑफ द इनफाइनाइट, ऐसा लिख रहे। तो हिंदी में क्या है वो, यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उनकी प्रकृति को समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो ही अनंत आया ना, है ना, अंग्रेजी में तीन अनंत आते हैं ना, इनफाइनाइट। ये बहुत अच्छा वाक्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, इफ द इनफाइनाइट रिवील्स हिमसेल्फ देन इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इनफाइनाइट बाय द ग्रेस ऑफ द इनफाइनाइट। तो जो अनंत है वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं, तो ऐसे अनंत की कृपा से उन अनंत को समझ पाना आसान हो जाता है। तो ये, और यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन भगवान को योगेश्वर करके संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त क्या वार्ता है, योगेश्वर मतलब भगवान अचिंत्य शक्तियों से युक्त है, उनके अचिंत्य शक्तियों के असीमित शक्तियों के कारण या सहायता से, हालांकि वो असीमित है, अनंत है, वो ऐसे जीव को भी अपने आप को दर्शन करा सकते हैं। ये उसका महत्व है योगेश्वर शब्द का। ठीक है, श्लोक क्रमांक 5। श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। तो भगवान यहाँ पर वो विश्व रूप का वर्णन करने लगे। भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, अच्छा होगा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो, ऐसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बार विश्व रूप का वर्णन हो रहा है। वो क्या है विश्व रूप का, स्वयं भगवान उसको वर्णन कर रहे हैं। विश्व रूप का वर्णन हो रहा है और स्वयं भगवान उसको वर्णन कर रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उसको वर्णन कर रहे हैं कि विश्व रूप क्या होता है। तो अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषिता थे, दर्शनाभिलाषी थे, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभ लाभार्थ प्रकट होते हैं। होता सो मेनी थिंग्स राइट, लाभार्थ प्रकट होते हैं, फलतः वह प्रकृति के अस्थाई काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्वरूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि ये विश्वरूप क्या है भगवान का, वो दिव्य है, लेकिन फिर भी वो भौतिक जगत में जगत के संबंध में प्रकट होता है, इसलिए वो काल के प्रभाव में है। जैसे भौतिक जगत प्रकट और अप्रकट होता है, वैसे वो भी प्रकट और अप्रकट होता है, और ये शाश्वत जगत में नहीं है, ऐसे वर्णन करते हैं यहाँ पर प्रभुपाद। यह कृष्ण की अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता है, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्यतः व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता, श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके प्रदर्शन हो सकते हैं। तो कोई भी उसको देख नहीं सकता, सिर्फ भगवान कृष्ण उसको प्रदर्शन करते हैं तो वो देख सकते हैं। तो श्लोक क्रमांक 6। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याचार्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यो वसुओ रुद्रो अश्विनी कुमारो तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। इन सभी के बारे में भगवान ने पिछले अध्याय में वर्णन किए थे, है ना, 10वें अध्याय में इन विभूतियों का, इन ऐश्वर्यों का वो वर्णन किए थे। अभी उनको दिखा रहे वो। तो जैसे आधुनिक विज्ञान में होता है, पहले थ्योरी होता है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पर भगवान भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, क्योंकि ये लोग मूर्ख लोग हैं, वो सीधा स्वीकार नहीं करते हैं, इनको थोड़ा ऐसे ही दिखाएंगे, ऐसे भगवान यहाँ पर दिखा रहे। ठीक है, तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा न सुना है। तो यहाँ पर तुम्हें ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा न सुना है। इसका अर्थ है इस विश्व रूप या विराट रूप को भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं अर्जुन के सामने, इसको पहले कोई भी देखा नहीं था और इसके बारे में कोई सुना भी नहीं था। पहली बार इसको दर्शाया गया है, पहली बार इसको सुनाया जा रहा है, इसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। इसका अर्थ है जब भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे थे वो मट्टी खाते हैं और यशोदा मैया वो मुंह खोलने के लिए बोलती है, भगवान मुंह खोलते हैं तो अंदर क्या देखते हैं, सभी विराट रूप को देखते हैं, सभी पूरा ब्रह्मांड को वहाँ पर दिखाया जाता है और वहाँ पर वृंदावन भी रहता है। वहाँ पर यशोदा क्या करते रहते हैं, वो कृष्ण के मुंह में देखते रहते हैं तो वो सब कुछ वो मुंह के अंदर देखते हैं, लेकिन वो विराट रूप वो अलग है और ये अलग है। और युद्ध के पहले भी जब धृतराष्ट्र, जब भगवान शांति के पांडव दूत करके वो कांचीपुरम में एक भगवान का विग्रह है, बहुत ही बड़ा विग्रह है, पांडव दूत विग्रह है ना, तो जो विग्रह है वो भगवान पांडव दूत बन के गए थे और लेकिन ये मूर्ख लोग दुर्योधन वगैरह भगवान को भागना चाहते थे, वो तब वो एक विराट रूप को दिखाया उन्होंने। और उस समय धृतराष्ट्र को उन्होंने ऐसा चक्षु दिया वो देखने के लिए, ताकि कम से कम अंत में तो समझ में आ जाए कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान है करके, ये युद्ध में लड़ने से क्या होगा, सभी उनका हत्या होगा, कौरवों का हार हो जाएगा, अंत में तो ये आसक्ति अपने पुत्र के प्रति छोड़ दिया, ऐसे उन्होंने दर्शाया उन्होंने। लेकिन फिर भी वो समझा नहीं धृतराष्ट्र, इसलिए पहले श्लोक में हम लोग देखते हैं वो चाहते थे कि युद्ध हो, ये युद्ध कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है उसके प्रभाव में आकर ये युद्ध को तो समझौता तो नहीं कर देंगे ये लोग, ऐसे उनको भय था, उस भय को व्यक्त करके ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो लोग, क्या किया युद्ध भूमि में इकट्ठा होकर, युद्ध भूमि में इकट्ठा होकर क्षत्रिय लोग तो काटेंगे मारेंगे और क्या करेंगे, है ना, क्षत्रिय लोग उसके लिए आते हैं। तो वहाँ पर भी इसलिए पांडव दूत वो भगवान का विग्रह है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उन्होंने दिखाया धृतराष्ट्र को, लेकिन वो रूप जो यशोदा मैया को उन्होंने दिखाया और यहाँ पर जो अर्जुन को दिखा रहे हैं, जिसका वर्णन फिर से धृतराष्ट्र को किया जा रहा है संजय द्वारा, तो वो सभी अलग अलग है। तो क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण, तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखोगे जिन्हें पहले किसी ने न तो देखा है न सुना है, ऐसे वो कहते हैं। या तो श्लोक क्रमांक 7, इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्यश्चराचरं मम देह गुडाकेश यस्यान्य द्रष्टुमिच्छति चसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो, तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहो चाहते हो उसको यह विश्व रूप देखने वाले दिखाने वाला है, या एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि पूरा एक ही जगह पर बैठ के पूरा ब्रह्मांड को कोई भी देख नहीं सकता है। हमारे अज्ञान वैज्ञानिक लोग ऐसे कर सकते हैं तो कितना प्रसन्न हो जाए होते थे ना, है ना, और लोगों को वो लोग उनके बहुत सारे अन्यायी बन जाते थे ना? तो वो लोग अपने टेलीस्कोप के द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, दूरदर्शी यंत्र के द्वारा वो लोग भगवान को देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं ब्रह्मांड को देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस जगत में अलग अलग जगह पर कौन क्या क्या है, क्या क्या है वो देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सब दूरदर्शी यंत्र क्या है, सब बहुत ही सीमित है, ये सब चीज़ हमारे देखने की जो शक्ति है पहला सीमित है, और हम जो भी यंत्र बनाते हैं वो क्या है, वो भी सीमित होता है। वो हमारे नेत्रों को या हमारे इंद्रिय के जो अनुभव करने का जो शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं बना सकते हैं उनको। इसलिए हमारे देखने का या हमारे अनुभव करने का जो शक्ति है वो सीमित रहता है। और जो भी हम लोग देखते हैं उन यंत्रों के द्वारा, फिर से हमें फिर से यही इंद्रियों से हमें क्या करना पड़ता है, उनको वो जो भी हमें समाचार मिलता है उनसे उसको फिर से इन इंद्रियों से ही हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है, उनको फिर से समझना पड़ता है। तो इसलिए वो परिपूर्ण हमें कभी समझ में नहीं आएगा समाचार पूरा ब्रह्मांड के बारे में। इसको ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना क्या है, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण या ऐसे चीजों को सिद्ध करने का अर्थ होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये सीमित हो जाता है, ये ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता है, वो इट्स नॉट रिलायबल, जिसके ऊपर हम लोग व्हाट वी से रिलायबल, हम उसके निर्भर नहीं कर सकते हैं, निर्भर नहीं हो सकते हैं, ये परिपूर्ण नहीं है। तो और हम लोग ऐसे प्रत्यक्ष देखते हैं और उसके आधार पर हम लोग कुछ अनुमान करते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, ब्रह्मांड का आरंभ ऐसे हुआ था, विश्व का या यूनिवर्स का ऐसे, यूनिवर्स ऐसे अस्तित्व में आया, या जीव का सृष्टि ऐसे हो गया जैसे डार्विन ने बताया। हाँ, तो ऐसे अनुमान करते हैं लोग, मे बी परहैप्स लाइक ऐसे ऐसे। तो डार्विन ने जो ग्रंथ लिखा ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, उसमें तो पूरा जीवों का कैसे सृष्टि हो गया उसमें पूरा ऐसे भरा हुआ है, मे बी परहैप्स ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हुआ होगा, ऐसे शब्दों से ही बना, ये सब अनुमान है, ये सत्य नहीं है, ये अनुमान है, सिर्फ एक सजेशन हो सकता है ना, राइट और नॉट। तो इसलिए ये दोनों क्या है, क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित है, उसका आधार ही प्रत्यक्ष है, इसलिए वो भी सीमित होता है। तो इसके कारण, क्योंकि आधुनिक विज्ञान पूरी तरह इस अनुमान प्रत्यक्ष और अनुमान के ऊपर आधारित है, वो कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। वो करोड़ों सालों तक संशोधन करते रहे, वो कभी भी परिपूर्ण नहीं होंगे, वो हमेशा भ्रमित रहेंगे वो। तो विशेष करके यहाँ पर विश्व रूप विश्व का ब्रह्मांड का वर्णन हो रहा है। तो ब्रह्मांड के बारे में तो कितना, जैसे वो कॉस्मोलॉजी है ना, तो खगोल क्या है, खगोल या खगोल शास्त्र ना, तो जितने खगोल शास्त्रज्ञ है उतने सारे खगोल शास्त्र के धारणाएं हैं, मत है। तो अभी वो प्रयास कर रहे एक ऐसा मत को स्थापित कर या ऐसे सिद्धांत को बनाने के लिए, उसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं। वो सभी मतों को धारणाओं को इकट्ठा करके एक ही मत बनाना चाहते हैं वो लोग। ऐसे लोगों को वो बताते रहते हैं भविष्य में हम लोग ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कितना भी भविष्य क्या है बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा है, फिर भी उसके ऊपर कभी विश्वास मत करो बोलते, नेवर ट्रस्ट फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट इट इज। तो ये पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं इसको, अभी अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है फिर भी चेक दे रहे हो, आगे जाके आपको यहाँ से ऐसे चेक निकाल, इतना सारा पैसा निकाल सकते हैं आप ऐसे कर। कोई इसको उसको स्वीकार करेंगे कोई ऐसे चेक को, है ना, ये पोस्ट डेटेड चेक है। और तो एक ही स्थान पर बैठ के ये सब देखना मुश्किल है। इसी सूर्यमंडल में ही वो लोग सोलर सिस्टम में पहले वो प्लूटो को देखा था उन्होंने, अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो पहले चला गया वो अप्रकट हो गया वो। ऐसा एक ग्रह था शनि ग्रह कहते हैं उसको, प्लूटो। तो लेकिन शनि ग्रह है जो शास्त्रों में वर्णन है वो है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जो प्लूटो था वो पहले प्रकट हो गया वैज्ञानिकों के मन में, अभी वो अप्रकट हो गया, फिर वो नहीं है ऐसे बोल दिया। फिर कितना 74 है, कभी उसको ढूंढा था उन्होंने, 83 है ऐसे, तो 30 साल के बाद वो ख़त्म हो गया उसका। जीवन। तो ऐसे कई सारे उनको धारणा है, वो देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे, भगवान की इच्छा से जब भगवान से शक्ति प्रदत्त भक्त जो होते हैं वो एक ही स्थान पर बैठ के सभी विश्व को या ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखते हैं ना, प्रभुपाद जी ऐसे चीज़ों का वर्णन करते हैं कोई सामान्य लोग उसको देख नहीं सकते। ठीक है, श्लोक क्रमांक 8। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी उन इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ऐसे कहते हैं, पश्य मे योगमैश्वरम्। तो नवे अध्याय के आरंभ में भी उन्होंने बताया पश्य मे योगमैश्वरम्, पांचवें श्लोक में ना, तो नवे अध्याय के पांचवें श्लोक में उन्होंने ऐसे बताया पश्य मे योगमैश्वरम्। देखो वहां पर वो दिखाई नहीं रहते, सिर्फ वर्णन करना रहते हैं। जब कोई अच्छी तरह से वर्णन करते हैं तो भी वो दृश्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है ना, ऐसा लगता है ना, हमें अनुभव हो जाता है कि नहीं। तो या जब कोई वक्ता भगवान के लीलाओं के बारे में, बहुत ही योग्य वक्ता, महान भक्त भगवान की लीलाओं को वर्णन करते हैं तो वो पूरा हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो वैसे नवे अध्याय में अर्जुन को अनुभव हुआ, यहाँ पर वो सबको दिखाने के लिए, सबको समझाने के लिए वो पूरा वास्तविक रूप में दिखा रहे हैं यहाँ पर, नेत्रों के द्वारा देखने के लिए जो देखा जाता है उसको दिखा रहे हैं। कानों के द्वारा भी देखा जाता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आंखों के द्वारा ही देखना चाहिए हमको। इसको सुतिक्षित पंत बोलते हैं, सुतिक्षित मतलब सुन के देखना है। वो नवे अध्याय में सुन के देखा उन्होंने और अभी वास्तव में चक्षु के द्वारा देखा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि आप इसको देख नहीं सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो चक्षु नहीं है, अभी मैं आपको चक्षु प्रदान करूँगा। हम लोग आरंभ में चर्चा कर रहे थे क्यों ये विराट रूप को दिखाने के लिए अर्जुन बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक अवतार तत्व को जानने के लिए, अवतार के जो लक्षण होते हैं, सही अवतार को कैसे पहचानना चाहिए उसके विधि को स्थापना करना चाहते थे। तो जब आप उनको पूछेंगे, जो तथाकथित अवतार होंगे भारत में, ऐसे बहुत सारे तथाकथित अवतार होंगे ना, जब आपको उनको पूछेंगे कि आप विश्व रूप दिखाइए, फिर अवतार है तो भगवान का, तो फिर वो क्या करेंगे, आपके पास वो चक्षु नहीं है ऐसे बोलेंगे देखने के लिए। लेकिन भगवान यहाँ पर चक्षु दे के उनको दिखा रहे, तुम भी भगवान है तो थोड़ा दिखा, चक्षु दे के तुम हमें भी दिखाओ ना, ऐसे उनको या विनम्रता से ही आप पूछ सकते हैं, विनम्रता से ही आपको, हम दूसरों को आपको सिद्ध करना चाहते हैं, आप अवतार है करके, है कि नहीं, विनम्रता से आप पूछ सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं फाइटिंग करने का, जरूरत नहीं है, तो शांति से ही पूछ सकते हैं, बट यू कैन बी फर्म इन योर स्टेटमेंट्स, विनम्रता से ही उनको पूछ सकते हैं। तो ऐसे उनको आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वर्णन, लेकिन शिल प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, वास्तव में भक्त लोग इसका इच्छा नहीं करते हैं देखने का, इस विश्वरूप का। तो विश्वरूप को देखने का क्या अर्थ होता है, विशेष करके जो भगवान के शुद्ध भक्त है, अर्जुन जैसे जो भगवान के नित्य पार्षद है और भगवान के संबंध में जो उनके जो भगवान के साथ जो संबंध है उसमें जो स्थित है, ऐसे भक्त लोग विश्वरूप को नहीं देखना चाहते। क्यों, क्या हो जाता है उसको देखने से, उनके अंदर जो उनका जो संबंध है उसमें बाधा आ जाता है। कैसे, वो ये ऐश्वर्य संबंध मतलब भगवान के ऐश्वर्यों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो दो प्रकार के भगवान के साथ संबंध होते हैं या भक्ति होता है, एक है ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र भक्ति, दूसरा है माधुर्य भक्ति। दो प्रकार के भक्ति होते हैं। जो वैकुंठ के भक्त है भगवान के, वो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र भक्त है। वो उनको भगवान के ऐश्वर्य का और शक्तियों का ज्ञान होता है, इसलिए वो बहुत ही सम्मानपूर्वक उनको क्या मानते हैं, वो परम नियमता है, परम शक्तिशाली है, ऑल माइटी, ऑल ग्रेटेस्ट, ऐसे अल्लाह जहुआ ऐसे वो शब्द क्या करते हैं, ऐसे ऐश्वर्य को व्यक्त करते हैं वो। तो ऐश्वर्य भाव से भगवान को, वैकुंठ में भी ऐसे ही होता है, भगवान को ऐश्वर्य भाव से भगवान का सेवा किया जाता है। तो मंदिरों में भी जब हम लोग पूजा विग्रह सेवा करते हैं तो ऐसे ऐश्वर्य भाव से ही भगवान का पूजा विग्रह का सेवा किया जाता है, क्योंकि हमें पहले वो भावना आना चाहिए, उनकी उनके महत्ता को या भगवत्ता को जानना चाहिए हम लोग नवसकीय भक्त, इसलिए ऐसे सेवा होता है मंदिरों में भी। तो लेकिन वृंदावन में जो भक्ति होता है उसको माधुर्य भक्ति कहते हैं, जहाँ पर भक्त लोग भगवान के ऐश्वर्य और ज्ञान, भगवान के भगवत्ता के बारे में जो ज्ञान है उससे वो लोग उसको भूल जाते हैं, या दूसरे शब्दों में भगवान की जो अंतरंग शक्ति है या लीला शक्ति है वो उस ज्ञान को वो आच्छादित कर देता है, इसलिए वो लोग क्या समझते हैं भगवान को, भगवान को एक मित्र समझते हैं, उनको एक उनके बच्चा समझते हैं, जैसे नंद महाराज और यशोदा ग्वाल बाल उनको अपना मित्र समझते थे, या गोपियां उनको प्रेमिका, भगवान को प्रेम प्रेमिका समझते थे, ऐसे उनका अलग अलग संबंध होता है। तो इसको माधुर्य भक्ति कहते हैं, वहाँ पर ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं जानते हैं कि भगवान है करके, लेकिन वो उनके जो लीला शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, उसको योग माया है, उनको उस ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। कभी कभी भगवान प्रकट करते हैं वृंदावन में, कोई असुर का मार दे, असुर को मार देते हैं, लेकिन फिर भी उनका माधुर्य उतना तीव्र रहता है कि ये क्या मेरा मित्र है, ये क्या मार सकता है, अब मैंने इसको हरा दिया, ये क्या मल्ल युद्ध में मैंने इसको हरा दिया, ये कैसे मार सकता है। हम लोगों की सहायता से, या मधुमंगल ने बोलता है मैंने इसको आशीर्वाद दिया इसलिए उसने कुछ किया, ऐसे बोलते। तो वो कोई कभी भी वो उनको ऐसे महसूस नहीं होता है, बीच बीच में वो आता है लेकिन फिर भी भगवान उसको बुला देते हैं। तो भगवान कृष्ण पूतना को हत्या करते हैं, लेकिन यशोदा और अन्य गोपियाँ भयभीत होकर वो क्या करते हैं, भगवान की रक्षा करने के लिए वो विष्णु के नाम उच्चारण करते हैं, आप इस ओर से इनको बचाइए, आप इस ओर से इनको बचाइए, और गाय के गोबर से उनको नहलाते थे ताकि सभी अशुभ चले जाए करके, ये सब चीज़ वो करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान हमारे रक्षा के ऊपर निर्भर है, ऐसे क्योंकि माता पिता का ऐसा भावना होता है ना, बच्चों को रक्षा करना चाहिए करके। तो ये भावना, ये इसको माधुर्य भाव कहते हैं, और ऐश्वर्य भाव मतलब वो वैकुंठ में रहता है। तो भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे 5000 साल पूर्व, ऐसे माधुर्य लीलाओं को उन्होंने आस्वादन किया अपने भक्तों के द्वारा। तो फिर वो अपने वापस धाम वापस गए, फिर वहाँ जाके वो सोचने लगे कि मैंने तो अपने भक्तों के साथ क्या किया, ये सब आस्वादन किया, लेकिन ये पूरा संसार क्या है, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र भक्ति से भरा हुआ है, ये मुझे आनंद नहीं देता है ऐसे भक्ति, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, ये वृंदावन के जो प्रेम भक्ति है वो सबको बांटना चाहिए, ऐसे वो फिर से सोचते हैं। ऐसे सोचकर भगवान इस जगत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये बाह्य कारण है चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य होने का इस जगत में, सबको ऐसे भक्ति को वो सिखाना चाहते थे, वो ब्रज के भक्ति को। तो हम लोग जब मंदिर में ऐसे ऐश्वर्य भाव से जो भक्ति करते हैं, वो साधना वैधि साधना विधियों को पालन करते हुए, वो और जो दक्षिण भारत में जो वैदिक भक्ति का विधियों विधि भक्ति का जो पालन करते हैं उसमें अंतर है। वो लोग वैकुंठ तक जा सकते हो, हम लोग क्योंकि इसको राग मार्ग कहते हैं इसको, तो ये हालांकि वैदिक नियम हम लोग पालन करते हैं, ऐश्वर्य बाणा होता है, लेकिन मार्ग ये राग मार्ग है। तो वो हम लोग वृंदावन की ओर चलते हैं ऐसी भावना से। एनीवे, ये सब चीज़ बहुत गहरा विषय है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों को ये ऐसे ऐश्वर्य जो है जो विश्व रूप में प्रकट होता है वो देखना अच्छा नहीं दिखता है उनको। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप, दो भुजी द्विभुज रूप अच्छा होता था ना, द्विभुज रूप के अतिरिक्त अन्य किसी के रूप में देखने की इच्छा नहीं करता करते। व्हाट इज दिस? भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षु से करना होता है, ना तो न कि मन से। कृष्ण की विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चलेगा चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहते थे अतः भगवान ने इसे उसे विराट रूप को दिखाने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बांधे हैं वे अनेक ऐश्वर्यों के ईश्वरहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन कराए। वे तो शुद्ध प्रेम में इतना निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने निभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। इत्तम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रिता नरधारकेन सकाम विजुः कृत पुण्य पुंजः। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। भागवत दशम स्कंद और 12वें अध्याय श्लोक क्रमांक 11। तो यहाँ पर कृत पुण्य पुंज जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। येषां त्वन्तगतां कौपं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। और विशेष करके दृढव्रत तो ठीक है, वो साधन भक्ति को हम लोग स्वीकार करते हैं दृढ़ता पूर्वक, लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रेम भक्ति को प्राप्त करना बहुत ही विरला है ये। तो इसके लिए बहुत ही पुण्य का पूंजी जो है या आध्यात्मिक सुकृति का जो पूंजी है, कृष्ण भक्ति करने से जो सुकृति प्राप्त होता है उसकी जो पुण्य पूंजी है उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग ऐसे स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो जब इस स्थिति में रहते हैं तो वो लोग कोई ऐश्वर्य ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं हो जाते है ना। वो जब गोपियाँ भी रासलीला कर रहे थे बीच में वो भगवान क्या है चतुर्भुज रूप को स्वीकार किया था उन्होंने, उनको ऐसे दंडवत नमस्कार करके वो चल पड़े वो क्योंकि उनसे वो आकर्षित नहीं हुआ, ऐसे ऐश्वर्य भाव से आकर्षित नहीं हुए वो। श्रील प्रभुपाद भी इसके पहले बहुत बार ऐसे बताया ना, भगवान कृष्ण के भक्त लोग विभुज रूप से ही आकर्षित रहते हैं। कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी को, वो उन्होंने वृंदावन के भक्ति के बारे में नहीं बताया, लोगों को पता नहीं है कि ये सब प्रभुपाद जी वहाँ पर इस इन श्लोकों में इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं। वो लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, है ना, वेरी बहुत ही शीघ्र वो बहुत ही प्रेमी भक्त बनना चाहते हैं, है ना। इसके लिए बहुत पुण्य का जरूरत होता है, कृत पुण्य पुण्य। और प्रभुपाद जी यहाँ पर सब वर्णन किया। तो तथ्य तो यह है कि भक्त विश्वास को देखने की, विश्व रूप को देखने की इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता है, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अभी तो साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा प्रदीप्ति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् मया योगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। तो श्लोक क्रमांक 10-11। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको आतुयूतम दिव्यमालांबरधरम दिव्य गंगानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अर्जुन ने उसे विश्व रूप में अनेक मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषण से अलंकृत था और उनके दैवी हथियार उठाए हुए थे। ऐसे दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियों लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय तेजमय असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ऐसे आश्चर्यजनक जो रूप को भगवान महायोगेश्वरो हरि की, यहाँ पर संजय वो शब्द उपयोग कर रहे हैं ना, वो महायोगेश्वरो हरि अत्यंत शब्दों से युक्त महान जो भगवान हरि है, वो उनको दर्शन कराया। इसका अर्थ होता है ये तथाकथित अवतार जिनके पास कोई शक्ति नहीं भगवान का, तो वो लोग कैसे इनको ये सब दर्शन करा सकते हैं, है ना। तो उन्होंने अर्जुन को ये दर्शन कराया वो दिव्य चक्षु देकर। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अर्जुन को छोड़कर अन्य कोई उसको देख नहीं रहे थे, लेकिन हाँ संजय क्या है वो देख रहे थे। व्हाट इज दैट, सो तो उसको अर्जुन देख रहे थे, अर्जुन एक ही स्थान पर बैठ के ये सब देख पा रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो महायोगेश्वर है अचिंत्य शक्ति है, उसके कारण वो शक्य हो गया। और इन श्लोकों में अनेक शब्द भी बार बार आता है ना, तो इसके बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप में रूप को देख रहे थे उसके अनेक उसके हाथों मुखों फाओं की कोई सीमा ना थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे देख रहे थे। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण है। तो श्लोक क्रमांक 11, तो अचिंत्य शक्ति के कारण है, इसका अर्थ क्या है? महायोगेश्वरो हरि शब्द आता है ना वहां पर, तो वो है। दिवि सूर्य सहस्रस्य
भवेद् युगपद्युत्थिता यदि वासदृशी सस्याद् वासस्तस्य महात्मनः।
यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उन्हें प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समान समता कर सके। तो यू नो सैकड़ों हजारों, यहाँ पर सिर्फ वो हजारों लिखा गया है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, सैकड़ों हजारों सूर्य एक साथ समान प्रकट हो गए तो भी, तो इससे तुलना नहीं कर सकते, ऐसे अर्जुन संजय कह रहे धृतराष्ट्र को। तो क्योंकि अर्जुन को ऐसे दिव्य चक्षु दिया गया था इसलिए वो देख सकते थे, लेकिन लेकिन संजय धृतराष्ट्र तो इसको देख नहीं सकते थे, और संजय व्यासदेव की कृपा से उसको देख रहे थे, एक मानसिक चित्र प्रदान कर रहे संजय धृतराष्ट्र को, ऐसे श्रील प्रभुपाद इसमें कह रहे। तो कौन ऐसे देख सकते हैं? क्या हम लोग एक सूरज को देख पाते हैं? अभी बाहर जाके आप सूरज की ओर देखने के लिए कोशिश कीजिए, आप हम देख नहीं सकेंगे उसको, एक सूरज को, लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों सूरज एक साथ आ गए तो क्या हम लोग देख सकेंगे? सिर्फ मन में कल्पना किया जा सकता है कि क्या था ये ऐसे विश्व रूप, विराट रूप। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 13, तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम मने कदा अपश्ये अवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद तत्र शब्द का महत्व बता रहे हैं कि वो सूचित करता है कि अर्जुन एक ही स्थान पर बैठ के, या अत्र मतलब उस रथ के ऊपर बैठ के ही पूरा ये विश्वरूप को दर्शन कर रहे थे। दोनों कृष्णार्जुन वो रथ के ऊपर ही थे, इसका पुष्टि पहले श्लोकों में भी आता है ना, वो एक ही उसी स्थान पर बैठ के दो तीन बार आया है इसके पहले तो। और इस श्लोक में और वो स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण और अर्जुन वो रथ के ऊपर ही बैठे थे, और अर्जुन रथ के ऊपर ही बैठ के विश्वरूप को दर्शन कर रहे थे, और भगवान वहाँ पर बैठ के ही विश्वरूप का दर्शन करा रहे थे। तो कभी कभी हम ऐसे चित्र देखते हैं ना, वो कृष्ण अर्जुन वो रथ के नीचे क्या है उतर गए हैं, और भगवान ऐसे खड़े होकर कुछ उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहे हैं गीता सार फोटो पिक्चर, ऐसे चित्र देखते हैं ना, लेकिन वो गलत है। यहाँ पर वर्णन हो रहा है अत्र शब्द से कि वो रथ के ऊपर ही थे वो, ये हमें समझना चाहिए। और प्रभुपाद भी खेलते हैं, तो युद्ध भूमि के अन्य लोगों इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सके। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक, इनमें से कुछ मिट्टी से बने हैं, कुछ सोने से, कुछ रत्नों से, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। तो अभी हम लोग ब्रह्मांड का चित्र बना रहे हैं ना, वो वैदिक प्लैनेटोरियम, उसके लिए क्या चाहिए? ऐसा दिव्य चक्षु चाहिए उसको समझने के लिए और समझाने के लिए और उसको प्रस्तुत करने के लिए, है कि नहीं? लेकिन भगवान दे देंगे भक्तों को, ऐसे जैसे अर्जुन को उन्होंने दिया ऐसे उसको हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये श्लोक से वो पता चलता है। तथा सा विस्मयाविष्टो रष्ट्रो मा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर् भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमारा हिंदी ऐसा ही पढ़ना। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे ना, वो 9वें-8वें श्लोक में कि दो प्रकार के भक्ति होता है, ऐश्वर्यमय और तो ऐसे गलत है। यहाँ पर उनको ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया भगवान के, वो आश्चर्यचकित हो गए वो। और दूसरे शब्दों में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं भगवान के जो सात पांच प्रमुख रस होते हैं, संबंध होते हैं, उनको मुख्य रस कहते हैं और सात गौण रस होते हैं उनको गौण रस कहते हैं। तो मुख्य रस और गौण रस पांच प्रमुख सीधे जो संबंध होते हैं भगवान का, हम लोग शांत रूप से उनका भक्ति कर सकते हैं, उनको दास रूप से भगवान का भक्ति कर सकते हैं, उनको साक्य रूप में भगवान का भक्ति कर सकते हैं, या उन वात्सल्य रूप से उनका भक्ति कर सकते हैं और माधुर्य रूप से उनको भक्ति कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी भगवद्गीता के भूमिका में वर्णन करते हैं। तो ये पांच सीधे संबंध है भगवान के साथ, और इनको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए भगवान बढ़ाने के लिए अन्य भी सात गौण रस होते हैं, तो इस संबंधों में वो स्वाद बढ़ाते हैं। तो या वो भी भगवान के साथ ऐसे संबंध है तो उनको गौण कहते हैं। वो हमेशा नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए वो रह सकते हैं, इसलिए वो गौण है। लेकिन ये जो शाश्वत संबंध है वो हमेशा रहते हैं, नित्य रहते हैं। तो किसी को पता है साथ कौन सा गौण रस है, बताइए, कौन बताएंगे? प्रमुख रस कौन कौन से हैं? मुख्य रस अभी हमने बताया ना पांच, शांत दास्य साक्य वात्सल्य और माधुर्य, ये पांच रस है। और गौण रस कौन कौन से हैं तो एक एक करके है, आप लिख लीजिए। पहला है रौद्र, रौद्र का अर्थ होता है क्रोध। ऐसे कभी कभी भगवान के भक्त भगवान के ऊपर क्रोध कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग साधक है। ये प्रेमी भक्तों का वर्णन हो रहा है, ये सभी प्रेम के लक्षण है ये सब। रौद्र उसका अर्थ होता है क्रोध, और अद्भुत आश्चर्य रस, और तीसरा है हास्य, हास्य मतलब प्रहसन करना, हास्य मतलब जानते हैं ना, प्रहसन करना जो करते हैं आप लोग। चौथा है वीर रस या शौर्य कहते हैं। सो युद्ध भूमि में जब भीष्मदेव युद्ध कर रहे थे तब वो वीर रस को आस्वादन कर रहे थे भगवान के साथ। हालांकि वो महाजन है, भक्त है, फिर भी एक भगवान के विरुद्ध या भक्तों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, ये वीर रस को आस्वादन कराना, भगवान को आस्वादन करा रहे थे और स्वयं भी आस्वादन कर रहे थे। फिर दया करुणा दिखाना, जैसे भगवान अभी हम कह रहे थे ना पूतना को मार देते हैं, फिर जो यशोदा मैया को भगवान के ऊपर दया आता है, करुणा आता है कि तुरंत ही क्या करना, या जब भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर करुणा करके वो ऐसे करुणा व्यक्त करते हैं, आपको धूप में जाना पड़ेगा, छल के जाना पड़ेगा, बहुत सारे पाँव में कांटे लगेंगे, पत्थर लगेंगे, ऐसे वो करुणा दिखाती है वो भगवान के ऊपर। और उसके बाद में भयानक, भय भय, सो विभत्स, आघात, विभत्स मतलब आघात होना। उसके लिए उदाहरण क्या है, पूतना को जब भगवान ने, पूतना मर गई तो बहुत ही वो आवाज करके वो गिर गए सब कुछ, उससे वो उनको विभत्स का महसूस हो गया, भक्तों को वृंदावन में आघात का महसूस हो गया। तो कितने हो गए बताइए, सात हो गए ना, ये सात गौण रस बोलते हैं इसको। इसको विस्तार में भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया, तब हम लोग उसको विस्तार में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सात रस है। अभी यहां पर कौन से इन सात गौण रसों में कौन से, अर्जुन का क्या रस है, मूल रस, मुख्य रस कौन सा है अर्जुन के भगवान के साथ, साख्य, भक्तोसिमि सकाचेति ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर अभी एक इसमें अर्जुन एक गौण रस को भी प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर, जब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो ये कौन सा रस को यहाँ पर प्रकट कर रहे, आश्चर्य, वंडर है ना, उस रस को प्रकट कर रहे। इस अध्याय में विशेष करके 11वें अध्याय में 12 रसों में 11 रस का वर्णन आता है, आप उसको ढूंढिए, ये होमवर्क है आपके लिए। अभी कितने हुए, अभी ऑलरेडी हो गए ना, कितने हो गए, ये इस श्लोक में ये कहता है, इसके पहले के दो, इसके पहले के दो वर्णन हो चुके हैं अभी ऑलरेडी तात्पर्य में, समझ में आ गया, इसके पहले के श्लोकों में, ठीक है आप ढूंढ लीजिए उसको। तो ये 12 रसों में से 11 रस का वर्णन इस अध्याय में आता है, समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग यहीं पर रुकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रश्न बाद में लेंगे, हरे कृष्ण, 11:30 बजे बाद फिर आ जाएंगे।